आज की बात।
आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओ, आज हम भारत में बुलंद शहर की घटना पर चर्चा करेंगे। भारत में हालिया कुछ वर्षों में भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और चिंताजनक बात यह है कि उसमें धार्मिक उन्माद का रंग भी नजर आया है। पहले तो आम लोग इस हिंसा का शिकार होते थे, मगर अब सरकारी अधिकारी भी उससे सुरक्षित नहीं। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऐसी एक घटना में दो लोग मारे गए, जिनमें से एक पुलिस अधिकारी था। घटना के बाद के घटनाक्रम से बहुत से लोग इसे आम घटना नहीं बल्कि कुछ और ही बता रहे हैं। भारत में मीडिया की हालिया वर्षों के दौरान कई मामलों पर आलोचना होती रही है, मगर ऐसा लगता है कि इस मामले पर मीडिया का रुख कुछ अलग था। अलबत्ता टीवी चैनलों पर हमेशा की तरह बहस और झगड़े भी खूब हुए।
कि मृत व्यक्ति ने बयान दिए हैं क्या कि मुझे उसने गोली मारी है?
ये कैसे
कर रहे हैं तिवारी जी? आपको शर्म नहीं आती?
क्या मृत गाय ने बताया
आपको शर्म नहीं आती?
क्या मृत गाय ने बताया था कि किसने काटा?
जांच की रिपोर्ट है क्या आपके पास?
गैर जिम्मेदार लोगों को चैनल पर बैठाना नहीं चाहिए।
बुलंदशहर की घटना बहुत दिनों तक मीडिया पर चर्चा का केंद्र रही। हम भारतीय मीडिया पर इस घटना की चर्चा के कुछ हिस्सों से घटना की सही तस्वीर सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भारत के जाने माने पत्रकार रविश कुमार के विचार सुने।
बुलंदशहर की घटना से जुड़े वीडियो को बार बार देखिए, आपको उस समाज का चेहरा दिखेगा जिसकी तैयारी में राजनीतिक संगठन और न्यूज चैनल भी जोर शोर से लगे हैं। हिंदू मुस्लिम डिबेट आप जानते हैं। हम भीड़ की हर हिंसा से शायद सामान्य होते गए, शायद मारा जाने वाला हमारे मोहल्ले का नहीं रहा होगा, हमारे मजहब का नहीं रहा होगा, लेकिन अब इस भीड़ का शिकार मुस्लिम भी हो चुके हैं और हिंदू भी हो चुके हैं। गाय के नाम पर भीड़ ने पहलू खान को भी मार दिया और गाय के नाम पर सुबोध कुमार सिंह भी मारे गए। इसलिए इन वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप उन लड़कों को देख सकें जिन्हें हत्यारा बनाने के लिए भीड़ बनाई जा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं, 18-20 साल के लड़के, हर तरह के भय से आज़ाद, क्योंकि भीड़ में पुलिस का डर चला गया है, उन मुकदमों का भी डर चला गया है जिनके कारण इन नौजवानों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इस भीड़ में कोई बड़ा नेता नज़र नहीं आएगा, कोई बड़ी पार्टी का झंडा नज़र नहीं आएगा। बड़ा नेता और पार्टियां और संगठन इन्हें विचारधारा की गोली देकर अपना काम कर चुके होते हैं। किसी को इसकी चिंता नहीं है कि कथित रूप से गौकशी के मामले में कौन शामिल था, बस जो भी सामने है वही आरोपी नजर आ जाता है। आज इन नौजवानों में से कई हत्या के आरोप में पुलिस से भागे भागे फिर रहे होंगे। जिनकी बंदूक से गोली चली होगी और सुबोध कुमार सिंह की मौत हुई होगी, वो जिंदगी भर अपने गुनाह से भागता रहेगा। हत्यारा बनने के बाद बड़े नेता भी दूरी बना लेंगे, ये आप जानते हैं। कई तरह के वीडियो मिले हैं। एक वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है कि कथित रूप से मांस कहां से लाया गया, कौन लाया, किसने काटा। पुलिस जांच कर रही है इस वीडियो के बारे में। जिनके खेत में मांस मिलने की खबर आई थी वो झगड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरे गांव से लोग झगड़े के लिए आ गए। वो क्यों आ गए? आने से पहले उनकी पूरी तैयारी नजर आती है। ट्रैक्टर है, कट्टे हैं, हथियार है, पत्थर है, डंडे हैं, सब। इस वीडियो में आप देख लीजिए कि कलेजे पे पत्थर रखने जैसा इसे देखना। खेत में जीप खड़ी है। वीडियो देखने से लगता है कि कोई पिस्टल लेकर सुबोध कुमार सिंह के करीब जाता है। गोली की आवाज आती है, मगर कैमरा जब इस अधिकारी के पास पहुंचता है तो वो आदमी फ्रेम से हट जाता है और पीछे चला आता है। आवाज आती है कि अरे ये तो एसओ है, स्टेशन ऑफिसर। इसके बाद सब भागने लगते हैं। मंगलवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की घटना को लेकर विशेष बैठक बुलाई। इस घटना के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें सुबोध सिंह का नाम तक नहीं है।
भारत के वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने भी अपने एक साक्षात्कार में बुलंदशहर की घटना का सच बताने की कोशिश की है।
बीते 3 दिसंबर को राजधानी दिल्ली से लगे यूपी के बुलंदशहर जिले में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार से जुड़े अन्य संगठनों की अगुवाई वाली भीड़ ने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार डाला। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की नृशंस हत्या की मुख्यमंत्री योगी जी ने मॉब लिंचिंग कहा कि मॉब लिंचिंग ये नहीं है, एक दुर्घटना है, एक हादसा है, जैसे कुछ जैसे मानो कि कार सड़क से नीचे फिसल कर दुर्घटना का शिकार हो गई हो। उन्होंने ये भी कहा कि इरादा किसी का ऐसा नहीं था। आपने इरादा कैसे भांप लिया? मुख्यमंत्री, मंत्रीगण वहाँ के और तमाम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता ये बताने में लगे हुए हैं कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुख्य अभियुक्त बताया जाने वाला आदमी योगेश राज को बचाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद लगा हुआ है। बड़े बड़े नेता उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। वहाँ के कलेक्टर से लेकर वहाँ के जितने पुलिस अधिकारी हैं किसी भी ऐसे अभियुक्त की गिरफ्तारी से बच रहे हैं जिसका सीधा संबंध संघ परिवार की सांगठनिक संरचना से हो। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर संघ हिंदुत्व जो सत्ता में है आज, कानून और गवर्नेंस का उनके लिए क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि हिंसा परमो धर्म, यही एकमात्र चीज जो रह गई है उनके पास है। ये अजीब सरकार है कि अपने ही इंस्पेक्टर की हत्या के 2 चश्मदीद गवाहों को थाने के ड्राइवर राम आसरे और सुबोध कुमार सिंह के गनर वीरेंद्र के मुंह पर ताला लगाने का हुक्म दे रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भीड़ ने सुबोध कुमार सिंह को मारा उसके कुछ वीडियो सामने आए हैं। उस वीडियो में कुछ लोगों को यह कहते सुना गया कि ये वही इंस्पेक्टर है जिसने दादरी में अखलाक के मामले में, अखलाक वो आदमी जिसको कि मॉब लिंचिंग में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मार डाला गया था, और जितने मॉब लिंचिंग के हाल के घटनाक्रम हैं इस सरकार के तहत, मतलब अगर देखा जाए केंद्र में जो नई सरकार आई उसके बाद जितनी मॉब लिंचिंग हुई है उसमें सबसे पहली मॉब लिंचिंग दादरी क्षेत्र में हुई थी, और उस घटना की जो शुरुआती पड़ताल है वो शुरुआती पड़ताल किया था सुबोध कुमार सिंह ने। सवाल इस बात का है कि किन लोगों ने इस तरह की बातें की कि मॉब लिंचिंग की जो पड़ताल है वो इसी आदमी ने की थी, यानी गिरफ्तारी जो लोगों की कराई वो इसी की पड़ताल के कारण की गई। इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश किया गया जिसके बाद ये वाकया सामने आया। सुबोध कुमार सिंह की पत्नी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है और ये बात रिपोर्ट हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी कहा कि इस घटना के 7 दिन पहले उन्हें एक स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है उसकी तरफ से बाकायदा फोन पर सुबोध कुमार सिंह को धमकी दी गई।
हाँ, धमकी आया करती थी, हम लोगों से कह देते थे तुम लोग 8 दिन तक घर में से बाहर मत निकलना।
क्या ये जांच का विषय नहीं है?
राजनीतिक नेता तो इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ बता रहे हैं। SBSP के प्रमुख ओपी राजभर का ये इंटरव्यू सुने।
हर साल मुसलमानों का एक कार्यक्रम होता है बुलंदशहर, जिसमें बड़ी संख्या मुसलमान जुड़ता है। जो खबर वहाँ से मिली या मिल रही है, लगभग 15-16 लाख लोग वहाँ जुटे। योजनाबद्ध तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, अब तो नाम भाजपा का भी आ रहा है, जो अधिकारियों की जो BDO है वहाँ की, कि ये प्री प्लानिंग, इतनी बड़ी संख्या मुसलमान आया है उसको दंगा में की चपेट में ले चला जाए, तो ये प्लानिंग के तहत ऐसी योजना बनी जिसमें इंस्पेक्टर की हत्या हुई। और ये हिंदू की दुहाई देते हैं, हिंदू के नाम पे हिंदू की हत्या करते हैं। घटना योजनाबद्ध तरीके से जो घटाई जा रही है, एक तो योजना ना घटना है, ये लोग वहाँ क्या मतलब है? अगर पहले से बूचड़खाना वहाँ अवैध चल रहा था तो ये SP और DM से मिलकर के ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS के लोग क्यों नहीं उसको बंद करवा दिए? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस दिन को क्यों चुना गया जब वहाँ मुसलमान इकट्ठा हुआ?
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर अपने विचार प्रकट किए।
गहरी साजिश थी, साजिश हुई और उसमें लोगों की जान गई। और दुखद ये है कि पुलिस का एक जिम्मेदार अधिकारी, उसकी जान चली गई। ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पूरे उत्तर प्रदेश को, और मैं ये कह सकता हूँ कई जगह देश में भी, नफरत फैला के लोगों के बीच में खाई पैदा कर कर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रचार कर करके अपने लोगों को खुला छोड़ करके और लोगों के बीच में छोड़ करके नफरत फैलाई पहले। और याद कीजिए, जिस मुख्यमंत्री की भाषा ये हो कि ठोक दो, पुलिस ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा अधिकारी था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, उसकी जान ले ली थी, याद कीजिए आप। और अब ऐसा बवाल हुआ है कि जिसमें पुलिस के इंस्पेक्टर की जान चली गई।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का कहना था,
कानून का डर जब दिल से निकल जाएगा तो यही होगा। कानून का डर ही खत्म हो गया, क्यों कोई सबूत छोड़ेंगे वो? अखलाक की मौत की जांच करने वाले को नहीं जीने दिया ना। जो बोया है वो काटेगा मुल्क। सुप्रीम कोर्ट का जज साहब जो कह रहे हैं, जरा गौर तो कीजिए उस पर, मुल्क कहां खड़ा है? ये सब नाइंसाफियों का अंजाम है। बस यही कहूंगा, जो बोया है मुल्क वही काट रहा है। देखिए, अगर आप जो पहला वीडियो है अगर उस पर नजर डालेंगे जिसमें दो लड़के पहचान कर ये कह रहे हैं कि ये वही दरोगा है, इसका मतलब है कि कोई काम जरूर शनाख्त के बाद हुआ है।
बहरहाल श्रोताओं, वजह जो भी हो, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि सहिष्णुता के लिए विश्व भर में मशहूर भारत में हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इस गलत बदलाव के लिए सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मगर ये हकीकत है कि नुकसान सबको होगा और हो रहा है। चरमपंथ एक ऐसा दानव है जो अगर शक्तिशाली हो गया तो वो सबको निगल लेगा, और उसके लिए अपने पराये की कोई बात नहीं होगी। भारत में जिम्मेदार लोग यदि इलाके में आसपास नज़र दौड़ाएं तो उन्हें इसका उदाहरण भी मिल जाएगा, और दूसरों के लिए चरमपंथ का जाल बनाने वाले आज उसी जाल में फड़फड़ाते नज़र आ जाएंगे।